हरे कृष्णा।
एक संत ने यह कहानी बताई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन ब्रज में एक व्यक्ति जा रहे थे, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, देखो जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो उन्होंने कहा, इनको जज साहब क्यों बोलते हैं? तो कहते हैं कि महात्मा बनने के पहले जज थे। तो थोड़ा सा कुतूहल जागृत हो गया, तो उन्होंने कहा कि कैसे जज ये भक्त बने, महात्मा कैसे बने? उन्होंने कहा, दक्षिण भारत की कथा आई, और दक्षिण भारत में ये एक कोर्ट में जज थे। तो उसमें उसी शहर में एक व्यक्ति था, उसका नाम था भोला। बहुत ही भोला था वो, एक्चुअली भगवान का भक्त था और प्रभु रामचंद्र पर उसके बहुत बड़ी श्रद्धा थी। रघुनाथ जी करके पुकारता था उनको, और रघुनाथ जी का मंदिर भी था बड़ा वहाँ पर गांव में, उसमें आता जाता था। उसके तीन लड़के थे, एक लड़की थी। तो लड़की बड़ी हो गई तो उसको लगा कि उसका ब्याह करना चाहिए। तो तीन लड़कों को बुलाया और डिस्कस किया कि ठीक है, साहूकार से कर्ज लेते हैं और फिर कमाई करके आप लोग लौटा देना उसको। तो साहूकार को बुलाया और शादी के लिए कर्ज लिया और शादी कर दिया अच्छी तरह से। और शादी होकर फिर और विरक्त हो गया भगवान के प्रति। लड़के की शादी होकर लड़के अपने अपने पैर पे खड़े हो गए, तो वो मंदिर में ही जाके रहने लगा, रघुनाथ जी के मंदिर में। और यथावकाश लड़कों ने मेहनत करके पैसा कमाया और साहूकार को देने के लिए पापा को दे दिया कि बाबा साहूकार को दे देना। तो साहूकार को उसने मंदिर में बुलाया रघुनाथ जी के, और वहाँ पर पैसे दे दिए। तभी साहूकार थे भगवान के सामने और ये थे भोला जी, उन्होंने पैसे दिए। साहूकार ने उनको पावती दिया, रसीद दिया उसका। तो उन्होंने कहा, ये तो हम समझते नहीं, सब रघुनाथ जाने। तो साहूकार के मन में कपट आ गया, उन्होंने कहा, लगा कि ये आदमी तो एकदम भोला है, इसको तो हम चीट कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, कहा कि जल प्यास लग रही है, थोड़ा जल ले आना। और वो रसीद जो है वो उससे हाथ से ले ली और जल ले आना। तो जल लेने गया तो उसने वो रसीद, जो ऑफिशियल रसीद थी, उसको जेब में रखा, दूसरा कागज़ निकाला, उसको कुछ स्क्रिबल कर दिया ऐसे ही, और वो दे दिया उसको रसीद के रूप में। तो भोला ने क्या, रघुनाथ जाने। तो उसने वो रसीद जाके रघुनाथ जी के चरणों में रखी और कुछ देर बाद में अपने बैग में रखी। तो उसने पानी पिया और वो सीधे पुलिस चौकी पर गया, उसने कंप्लेन दिया कि इसने मेरे से कर्ज लिया था और उसको लौटाया नहीं। फिर को समन्स निकला उसके नाम पे, तो कोर्ट में एक नोटिस भेजी गई उसको। तो कोर्ट में उसको समन आया उसके नाम पे, तो जज साहब ये बैठे हुए थे, तो साहूकार भी थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो वो अपने वो रसीद लेके आया जो उसने दी थी उधर। तो ये तो बिल्कुल जायज़ रसीद नहीं है, इट्स नॉट एलिजिबल क्वालिफाइड फॉर। तो उन्होंने कहा कि पैसे दिए आपने उसको? हाँ दिए पैसे, बिल्कुल दिए। बोला, कौन साक्षी था उस समय आपने जब, किसने देखा है? बोला, रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी के सामने तो दिया। तो वो जज बोलते हैं, रघुनाथ जी के नाम पे समन्स ऑर्डर जारी किया जाए, रघुनाथ जी को बुलाया जाए और वो साक्षी दे दें कि मैंने दिया। उनको लगा रघुनाथ जी कोई व्यक्ति होगा, वो सामने खड़ा होगा उस समय, कोई चाचा मामा कोई होगा बड़ा आदमी, रघुनाथ जी करके पुकार रहे हैं। तो फिर वो उस दिन का कोर्ट एडजोर्न होता है और वो समन लेके अगले दिन ढूंढ रहा है गांव में, कोई रघुनाथ जी है, कोई रघुनाथ जी है, पूरे गांव में ढूंढ रहा है, कोई रघुनाथ जी है ही नहीं उधर, कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी नहीं है। तो पूछते जाता है, तो बोला रघुनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर। उसको लगा कि मंदिर में रघुनाथ जी रहते होंगे, मतलब कोई आदमी रघुनाथ जी मंदिर में रहते होंगे। तो मंदिर में गया, रघुनाथ जी का मंदिर है? हाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। रघुनाथ जी कहाँ है? बोला अंदर है। तो पुजारी बाहर थे, तो उन्होंने कहा रघुनाथ जी के नाम पे समन आया है तो आप ले लीजिए। तो उसने फिर बड़ा आश्चर्य लगा उसको, लेकिन बोला ठीक है, भगवान के नाम पे समन से आया कोर्ट में हाजिर होने का। तो उसने वो ले लिया, साइन किया उसको, और उसको लगा कि ये रघुनाथ जी है, या तो रघुनाथ जी का आदमी जो भी है, रघुनाथ जी यहाँ रहते हैं, उसके नाम पे कर दिया उसने। तो पुजारी ने वो समन लेके ठाकुर जी के सामने गए, बोले देखो आज तक आपको बहुत सारे भोग आए, बहुत सारे गहने आए, बहुत सारे वस्त्र भेंट में आए, पर सम्मान पहली बार आया है। तो आपको ये सम्मंस को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो भोला जो है ना, वो आपका भक्त है, आपके बिना उसका कोई नहीं है। तो वो आपके भरोसे पे उन्होंने आपका नाम लिया है। पुजारी वॉज नोइंग एवरीथिंग पहले से ही। तो ठाकुर जी से कहते हैं कि वो पुजारी बड़ा भाव का भक्त था, उसने कहा ठाकुर जी आपका भक्त है वो, और आपके शरण में आए हैं, और आपके बिना उसका कोई नहीं है, आपका ही नाम लिया उसने, तो हमारी आपको विनती है कि आप जरूर जाना। तो अगले दिन ठाकुर जी को जगाया सुबह और अच्छा वस्त्र पहनाया, अच्छा श्रृंगार किया कि ठाकुर जी जाने वाले हैं आज, तो बाहर जाने वाले मंदिर छोड़ के, तो उन्होंने बहुत अच्छा श्रृंगार किया, भोग भोग दिया उनको, ब्रेकफास्ट दिया, और फिर भोला जी चले गए कोर्ट में। कोर्ट के समय पर भोला जी खड़े हो गए, जो चपरासी जो था जिन्होंने सम्मन दिया था वो भी था वहाँ पर, साहूकार भी आ गए थे, जज भी बैठ गए अपनी जगह पर, तो आवाज़ दे रहे हैं सब लोग खड़े, लेकिन रघुनाथ जी साक्षी नहीं आए ना, गवाह नहीं आए, तो आवाज़ दे रहे हैं रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो रघुनाथ जी तो नहीं आ रहे, अभी क्या किया जाए। बोले भोला कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी। तो कहते हैं वो आते ही होंगे, वो सब जगह रहते हैं, वो कहाँ पर हैं। बोले सब जगह छाए हुए हैं, वो हर जगह रहते हैं, आ ही रहेंगे होंगे। दोबारा आवाज़ लगाई तीन बार, तो फिर भी कोई नहीं आया। रघुनाथ जी किधर है रघुनाथ जी, मैंने कहा ना आते ही होंगे। उतने में तीसरी बार जब आवाज़ लगाई तीन बार, तो एक बुढ़ा आदमी आया, जो ऐसे कमर में झुका हुआ था, हाथ में डंडा था, सर पे फेटा पहना हुआ था, धोती पहनी हुई थी, ऐसे पुरानी सी धोती पहनी हुई थी, ऐसा हाथ उठा के रुको रुको आ रहा हूँ आ रहा हूँ करके ऐसे आया। तो उसको जो जो उसकी था ना, वो क्या कहते हैं उसको, कटहरी में उसको खड़ा कर दिया। तो फिर कोर्ट शुरू हो गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या रघुनाथ जी आप रघुनाथ जी हैं। फिर हाँ मैं रघुनाथ जी हूँ। आप थे इन्होंने पैसा देते पे आप थे। मैं बिल्कुल था मैं। तो फिर वो रसीद कहाँ है फिर, जो रसीद दी थी। तो रघुनाथ जी कहते हैं उनको कि साहूकार को यहीं रखा जाए, इनसे चाबी ली जाए उनके घर की, इनके घर के ड्राइंग रूम और दीवान खाने में दो अलमारियां हैं, दो नंबर की अलमारी में, तीन नंबर के शेल्फ में 32 नंबर की रसीद है, वो लेके आना। साहूकार को ही रखते हैं, पुलिस को लेके जाते हैं कोर्ट का आदमी, घर खोलते हैं, अलमारी खोलते हैं, तीन नंबर के शेल्फ है, 32 नंबर की वो रसीद जो उसने छुपा के रखी होती है वो प्राप्त होती है, वो लेके जज के पास सबमिट करते हैं। तो पता चलता है कि साहूकार का कपटी आदमी था, चोर आदमी था, उसने गरीब आदमी को फंसाने की कोशिश किया था। तो साहूकार को दंड होता है, क्या सज़ा होती है, और भोला को फ्री कर देते हैं। भोला गुनहगार था, लेकिन भोला फ्री हो गया, साहूकार गुनहगार बन के अंदर चला गया। तो जज को बड़ा आश्चर्य हो गया कि हमने इतने सारे केस अटेंड किए आज तक, ऐसा गवाह नहीं देखा जिसने उसके घर के दीवान खाने में दूसरे नंबर के कपड़े में तीसरे शेल्फ में 32 नंबर की रसीद कहाँ रखी है उसको पता था। तो वो चपरासी को पास आया, पूछा कि आपने जो संबंध भेजा था वो यही थे क्या। बोलते नहीं यो नहीं थे, जिसको मैंने वो संबंध दिया था वो तो कोई और था। और बाय द वे जब वो रसीद लेकर आया तब तक रघुनाथ जी गायब हो गए। वो लोग वेट करें ना, अभी जैसे कोर्ट अभी एडजोन हो गया, सब चाय पीने चले गए वहाँ, जब रसीद वापस आई सब लोग वापस आए, रघुनाथ जी गायब, लेकिन रसीद तो आ गए ना, अभी तो जैसा फैसला तो हो गया। तो फिर ख़त्म हो गया, वो फ्री हो गए, जेल में चले गए, फिर वो पूछने गए उनको, तो कहते कि वो नहीं था व्यक्ति, वो जो हमने जो दिया था वो दूसरा व्यक्ति था। तो और कुतूहल बढ़ गया उसका। तो बोलते फिर हम एक काम करो, वो सिपाही को बोला कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर आपने ये समन्स दिया था। तो ले गया उधर, तो पूछते 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 गया, अभी भी उसको लग रहा है कि रघुनाथ जी कोई व्यक्ति है, यही व्यक्ति उसको ढूंढने के चला गया था, उसको मिलने की बहुत उसको जिज्ञासा थी कि एक अजीब आदमी कहाँ से आया है, इसको मिलना है मुझे। तो गांव में कहीं किसी का रघुनाथ जी का नाम नहीं है। तो फिर वापस मंदिर में पहुँचे, तो मंदिर पहुँचे तो रघुनाथ जी यहीं रहते हैं। तो भोला मिला उनको उधर, हाँ यहीं रहते हैं। पहले भोला को पूछा कि अरे आपने तो जिसने गवाही दिया वो कहते कि मंदिर में रहते हैं, तो क्या उनका खुद का मंदिर है क्या मतलब? लेकिन उनको देख के तो लगा नहीं था कि उनकी इतनी हैसियत होगी, जो कपड़े जिस प्रकार के थे, कोई सेठ नज़र नहीं आ रहा था, कोई साहूकार ऐसा, कोई धनवान व्यक्ति नहीं। नहीं, उन्होंने मंदिर बनवाया नहीं है, वो मंदिर में रहते हैं। बोले कहाँ रहते हैं? ये देखो बैठे हुए हे रघुनाथ जी। तो उनको फिर भी ध्यान में नहीं आया। फिर सिपाही को पूछा कि कौन था व्यक्ति वो, तो पुजारी दिखाई पड़ा, मैंने इनको संबंध दिया था। तब जाके उसके दिमाग में लाइट आया कि अरे वो स्वयं ठाकुर जी वहाँ पर गवाही देने आए थे। तो इतने फूट फूट कर रोए, वो इतने फूट फूट कर रोए, घर पे गए अपने कोठी पर और पत्नी को मिलने के बोलने के पहले इतने रोए। फिर थोड़ा सा थम गए, बोले क्या हुआ? तो बोले साक्षात रघुनाथ जी आज साक्षात गवाह देने आए थे। बोले इसमें तो दर्शन हो गए ठाकुर जी को, तो कितनी खुशी की बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो फिर रो रहे हैं बोल रहे हैं और रो रहे हैं कि रघुनाथ जी साक्षी देने आए थे। अरे इतनी खुशी की बात है, आपका भाग्य खुल गया, ठाकुर जी ने आके दर्शन दिया आपको, तो आपको तो आनंद ही होना चाहिए, तो रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं कि जब वो कटहरे में खड़े थे तो मैं जज की कुर्सी में बैठा हुआ था, अदालत की कुर्सी में बैठा रहा मैं, रघुनाथ खड़े समझाते रहे, वो खड़े रहकर समझाते रहे और मैं बैठकर सुनता रहा, इसलिए रो रहा हूँ। उसी दिन इस्तीफा दिया और सीधे ब्रज में चले गए और कभी बैठते नहीं थे, हमेशा चलते रहते थे। मंदिर में आके थे, बाहर से खड़े होकर ही दर्शन करते, अंदर नहीं आते थे। लोग पूछते थे क्यों नहीं अंदर आते हो, मतलब मैं बड़ा गुनहगार हूँ उनका। वो अपना मंदिर छोड़ के गवाही देने को आए, लेकिन मैं जज बनकर बैठा रहा, उनको खड़ा करके उनकी गवाही सुनता रहा, मैं उनका गुनहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ। बोले बैठो तो सही। बोले अभी क्या बैठना है, उनको खड़ा करके मैं बैठा रहा, अभी तो खड़े रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, ये दक्षिण भारत की कहानी है और कुछ 50 सौ के अंदर की ही साल की कहानी है, 50 साल 100 के अंदर की कहानी है। एक संत ने कथा में बताई थी उसकी
कहानी।
बीच में एक वाक्य आता है, जब वो जज उसको पूछते हैं कि रघुनाथ जी कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि सब जगह बैठे हुए, आ रहे होंगे अभी। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वो कहते हैं अभी कैसे आपको समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हैं, बड़े पढ़ा लिखा होना ही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, समझाना बड़ा मुश्किल होता है उनको। बोले लोगों को तुरंत समझा सकते हैं आप, पढ़े लिखे आदमी को समझाना बहुत मुश्किल है। तो जब तक मंदिर नहीं पहुंचे और बहुत तहकीकात नहीं किया, तब तक उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये ठाकुर जी स्वयं आए। उनको लगा, फिर भी लग रहा था कोई व्यक्ति है ये, कोई अंदर बुढ़ा व्यक्ति मिलेगा, उससे बात करेंगे। ठाकुर जी अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते, जो उनके शरण में आया है, जो हृदय से उनकी शरण ले चुका है, बस तुम्हारे बिना हमारा अभी कोई नहीं है, आप ही हो सब कुछ, जो भी हो आप ही हो, माता पिता तुम्ही हो, माता तुम्ही, सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु तुम्ही, सब कुछ आप ही हो, और कोई सखा भ्राता हित चिंतक कोई और नहीं। ऐसे जब व्यक्ति शरणागत होता है तो ठाकुर जी भी बंद जाते हैं, ही बिकम्स ओबलाइज्ड टू टेक केयर ऑफ। प्रभु रामचंद्र की कहानी मुझे भी याद आ रही है, जब प्रभु रामचंद्र ने विभीषण आए ना उधर आकाश से, अभी तो आकाश में खड़े वेट में, अप्लाई कर दिया है कि हमको आना है, लेकिन उधर उनको परमिशन नहीं मिला है, तो आकाश में ही खड़े हैं। इधर मीटिंग हो रही है बड़ी जोरदार, सुग्रीव हैं उसमें, हनुमान जी है, राम है, लक्ष्मण है, सारी बड़े जांबुवंत है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो पूछ रहे क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव तो बोला कि इसको तुरंत मार देना चाहिए, ये सब छल कपट है, वो ऐसा नाटक करके आया हुआ है, रावण ने उसको भेजा है, उसका एक कपट है, उसको तो मार ही देना चाहिए। सब लोगों ने ऐसे ही ओपिनियन दिए। फिर लास्ट में हनुमान जी को पूछा कि आपका उपाय, आपका क्या मत है इसके बारे में, तो कहते कि इसको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, इसको तुरंत शरण देनी चाहिए, ये बहुत बड़ा वैष्णव है। जब मैं लंका में जलाने के लिए गया था तो पूरी लंका में केवल एक ही व्यक्ति के घर में 4 चिन्ह थे, शंख चक्र पद्म गदा के, और केवल एक ही व्यक्ति के घर में इतनी हिम्मत थी उसको कि लंका में रहकर भी राम नाम जप करने की उसकी हिम्मत थी, और तुलसी भी थी दरवाजे पर उसके। इतनी हिम्मत तो कोई निर्भय व्यक्ति कर सकता है जो शरणागत है भगवान, तो इसको तुरंत ही शरण में लिया जाए। तो ठाकुर जी उसको बुलाते हैं, शरण लेते हैं, और जैसे ही आते हैं ना वो विभीषण जी, हमारे प्रभु जी बोलते हैं उनको, आपको लंका का राजा बना देंगे, जब रावण का वध होगा तो आपको राजा बना देंगे। सब लोगों को आश्चर्य हुआ, अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ है, अभी तो रावण को मरने को बहुत टाइम है, शायद नहीं मरा तो, और प्रभु जी का वर्ण वचन है, वो प्रभु जी को निभाना पड़ेगा वो। तो फिर इसके बारे में चर्चा हो रही है कि विभीषण कितने बड़े भक्त हैं। तो विभीषण को लाने के पहले और एक चर्चा हुई, वो ये हुई कि अरे विभीषण क्या, सबका मत सुनने के बाद ठाकुर जी अपना मत दे रहे हैं, तो विभीषण क्या, अगर रावण भी अभी आता है वो कहता है आई एम वेरी सॉरी, मेरी गलती हुई कि आपकी पत्नी को लौटा रहा हूँ, मैं बहुत बड़े माया में था, अभी मैं मति खुल गई मेरी अच्छी तरह से, और मैं वापस दे रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना, तो मैं रावण को भी माफ़ कर दूंगा। तो लोग बड़े होशियार हैं, वो पूछते हैं आपने तो इनको वचन दे दिया कि विभीषण को राजा बनेंगे, अभी रावण बाद में आएंगे तो रावण को क्या देंगे आप? तो बोले कि रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो फिर आप कहाँ रहेंगे? उधर भरत भी बैठे हुए ना, उनका भी अधिकार है, तो आप अभी राज्यहीन हो गए, क्योंकि आप वापस लौट के जाएंगे तो आप रावण को अयोध्या का राजा बनाएंगे, इनको लंका का राजा बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? तो बोले कि मैं सब भक्तों के हृदय में रहूंगा। ऐसा कितना उदार हृदय भगवान का, देखो कितने शरणागत वत्सल है वो, सेवियर ऑफ द सरेंडर्ड सोल्स, वो खुद सब कुछ त्याग करके, पापी व्यक्ति भी शरण आया ना तो उसको भी सब कुछ देना चाहते हैं। मैंने वादा किया ना कि विभीषण को राजा बनाऊंगा तो फिर मेरा राज्य मैं रावण को दूंगा अगर वो शरण आया तो। और ठाकुर जी से बोलते हैं तो ऐसा ही, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन ना, कि देश को अच्छा बनाना है, दुनिया में श्रेष्ठ बनाना है, सबसे धनवान देश बनाना है, यहाँ सारी सुविधा देना है, ऐसा बात नहीं करते हो, जो बोलते हैं उसको उनको करना पड़ता है और करते भी हैं, वो ठाकुर जी का वचन है वो। तो जब वो बोल रहे हैं कि मेरी अयोध्या का राज्य आपको दूंगा मैं, तो कितना बड़ा त्याग है, क्योंकि तो उनको पता है वो भगवान है, एक दिन रावण को मारेंगे या रावण शरण शरण आएगा तो सीता को लेके जाएंगे वापस, तो उनका राज्य है वो, लेकिन वो देने को तैयार है। कमी केवल हमारे शरण जाने की कमी है, हम लोग शरण जाने में हिचकिचाते हैं, वो देने में हिचकिचाते नहीं है। वो रावण को भी अयोध्या देने को तैयार थे, तो भक्त की तो क्या बात है।
शरण जाने का क्या है?
मतलब उनका बन जाना, दाई विल बी डन। शरणागति का मतलब क्या होता है? मेरी इच्छा मैं अभी सोचना नहीं चाहता, आपकी इच्छा मैं मेरी इच्छा बनाना चाहता हूँ, या तो मेरी इच्छा को आपकी इच्छा में एकरूप कराऊंगा, या तो मेरी इच्छा को फेंक दूंगा और आपकी इच्छा को फॉलो करूंगा, उसको शरणागति कहते हैं। उसके लिए ब्रह्मचारी सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर भी आप हो अगर आपने अपनी इच्छा को उनकी इच्छा से जोड़ दिया तो वो हमारे हो जाते हैं, हम उनके हो जाते हैं।
और हमें कैसे पता कि भगवान की इच्छा क्या है?
भगवान की इच्छा भक्तों के माध्यम से पता चलती है। जब हम बहुत प्रामाणिक हृदय के होते ना और जानना चाहते कि भगवान भगवान की हमारे लिए इच्छा क्या है, तो जिस व्यक्ति के सामने आप वो इच्छा व्यक्त करते हैं उस व्यक्ति के माध्यम से भगवान आपको बताते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस समय कोई संत ही आना चाहिए बताने के लिए, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है, नंबर है उसके पास, ऐसा नहीं। जिस समय आपने वो प्रामाणिक इच्छा आप व्यक्त करते हो उस समय कठपुतली से भी वो बोल सकते हैं आपके लिए, ही कैन गिव यू गाइडेंस थ्रू एंट ऑल्सो। अरे हमको सिंसियर होना चाहिए बस, फिर वो आपके सामने जित कोई भी व्यक्ति होगा उससे आपको गाइडेंस दे सकते हैं। प्रामाणिकता हमारे हृदय में होनी चाहिए। भगवान इतने इतने करबद्ध है, मतलब वचनबद्ध है भक्तों के लिए, कि नामदेव जी एक बार भजन कर रहे थे और नामदेव जी के पीछे ब्रह्म राक्षस लग गया, जिस पेड़ के बैठे बैठे थे वहाँ से ब्रह्म राक्षस जो है वो उनके पीछे लग गया। ब्रह्म राक्षस मतलब 11th टाइप ऑफ घोस्ट, सबसे भयंकर होता है। 11th टाइप ऑफ घोस्ट सबसे भयंकर होता है, सबसे भयंकर योनि, उसके लिए भी तकलीफ वाली होती है योनि और बाकी लोगों के लिए भी होती। तो नामदेव जी बोलते हैं, अरे ठाकुर जी हर रोज नए रूप धारण करके आते हो, आज ब्रह्मराक्षस बन के आ रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। तो ब्रह्मराक्षस जो और चिढ़ जाता है और जोर से कुछ कुछ गर्जना करने लगता है, तो बोलते लगे हो अभी बिल्कुल, अभी तो छोड़ते नहीं रूप, आप ब्रह्मराक्षस बन के आज लीला कर रहे हो, भैया इनकी श्रद्धा देखो कैसी है। वो ब्रह्मराक्षस के अंदर भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, सोच रहे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं ब्रह्मराक्षस स्वयं आ रहा है। बहुत देर बाद होता है, गर्जना होती है और डरा धमकाना होता है, और यही बोल रहे हंसते हंसते जा रहे हैं, बोल रहे ठाकुर जी बस हो गया, अभी अभी तो प्रकट करो अपने आप को, कितनी देर छुपा के रखोगे। आखिर ब्रह्मराक्षस को अंत करके उसके अंदर जो परमात्मा के रूप में भगवान है, ब्रह्मराक्षस को खत्म करके प्रकट होने होते हो जाते हैं नामदेव जी के सामने। मतलब ब्रह्मराक्षस के अंदर से भी वो प्रकट हो गए, क्या करे, भक्तों को विश्वास ही नहीं किया ब्रह्मराक्षस है, भक्त ठाकुर जी को देख रहा है उसके अंदर, ठाकुर जी क्या कर सकते हैं। अगर आपने श्रद्धा व्यक्त किया है तो उसको श्रद्धा का जवाब देना पड़ता है। ब्रह्मराक्षस का भी उद्धार हो गया उसकी वजह से, ब्रह्मराज जी तो स्फोट होके मर गया, मतलब मुक्त हो गया, और उसके अंदर से परमात्मा प्रकट हो गए और व्यक्ति रूप भी प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि निराकार, उस परमात्मा के स्वरूप से पूरे चतुर्भुज विष्णु प्रकट हो गए और उन्हें चरणों का स्पर्श किया। धन्यवाद, बहुत देर के बाद ही दर्शन दिया आपने, बहुत देर लीला किया, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे भक्त हैं तो भगवान भी ऐसे हो जाते हैं, मैं वैसा भक्त बनना चाहिए।
तो ये सब भगवत गीता बोलती
है, ये तो सब कहानियां हैं, संतों की कहानियां हैं, लेकिन ये तो संतों की कहानियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग ग्रंथों में हैं। महाराष्ट्र में कुछ नामदेव की है, ऊपर यूपी में कई संतों की है, लेकिन तत्व जो है ये जो इसका तत्व बता रहे वो सब भगवत गीता में है, श्रीमद् भागवत में। अनन्यश चिंतयन्तो माम ये जनों पर विपासित, जो व्यक्ति मेरा अनन्य चिंतन करता है, मुझे क्यों शरण आता है, उसका योग क्षेम वहाम्य हम, उसका योग क्षेम मैं संभालता हूँ, उसकी देखभाल मैं करता हूँ। अनन्य चिंतन होना चाहिए, ये और वो दोनों नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा धन भी चाहिए, थोड़ा सा माया भी चाहिए, थोड़ा भगवान भी चाहिए, दोनों का खिचड़ी अच्छा होगा, जरा सेफ रहना अच्छा है ना। कभी कभी ये फेल हो गया तो ये है, कभी ये फेल हो गया तो ये है, ऐसा हमारा व्यवहार का होता है ना, बनिया का माइंड होता है ना, कि भाई वो अपना सिक्योरिटी सब जगह लगता है, कि भाई कहीं सोना खत्म हो जाए तो रुपया है, रुपया होगा तो सोना है, सोना नहीं तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं तो और कुछ है, सब जगह अपना सिक्योरिटी बना के रखता है, आखिर में बाद में सब सब चीज़ में डूब जाता है, सारी सिक्योरिटी डूब जाती है। एंगर मैनेजमेंट, भगवद गीता में एंगर का उगम कहाँ है वो बताए हैं, एंगर कहाँ से आता है। भगवान कहते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा, वो कहते हैं कि हर जीव जो है वो मुझे छोड़कर ये दुनिया को भोगने की इच्छा रख रहा है, मुझे छोड़कर आया है कि नहीं चाहिए आप मुझे, यहाँ पर आया है और उनको भूलकर सब जगह कुछ ना कुछ भोगने का प्रयास कर रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, अधिकार चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, रूप चाहिए, शरीर का भोग चाहिए, और कुछ चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और वो जब पूरा नहीं होता है, आपको पता है ना सब पूरा नहीं होता ना, बहुत बार हमारा जो प्रपोर्शन है इच्छा का वो हमारी योग्यता से ज़्यादा होता है तो हमको नहीं मिलता है वो। अभी समझो अभी शरद पवार सोचता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बन रहा है बेचारा, 70 साल का हो गया अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, कितने साल से उसका चल रहा है पॉलिटिक्स पूरा, लेकिन एन मौके पर फेल हो जाता है ना, तो दुखी हो गया ना आदमी। तो भगवान कहते हैं कि जब हमारी वासना अतृप्त रह जाती है किसी कारण से तो क्रोध आता है, क्यों नहीं हो रहा है, वाई। आज बीवी को बताया था बैंगन की सब्जी बना देना, तो बेचारे को बैंगन नहीं मिले मार्केट में किधर भी, तो उसने घिया की सब्जी बनाई, तो आप घर से ऑफिस में से घर से आए ये उम्मीद से कि बैंगन का भरता खाएंगे और आपको घिया की सब्जी दिख रही है, तो आपको गुस्सा आया, क्यों क्यों नहीं बनाया, सुबह से बोल के गया तुम्हें, क्यों नहीं प्लानिंग किया उसका, क्यों नहीं वो मार्केट में जाके ढूंढा, उनसे क्या गुस्सा आया। तो वो क्रोध का कारण है कि हमारी अपेक्षा है ऐसी कि आज मुझे ऐसा चाहिए होना चाहिए, और जब नहीं होता है प्रकृति की इच्छा से, हमारे कर्मों की वजह से या और किसी कारण से नहीं होता है पूरा, वो बड़े धूमधाम से आप घर पे आए और कुछ सोच के आए थे, घर पे लाइट ही चली गई है, अभी क्या करेंगे, आपके कुछ सोचा था पार्टी करेंगे आज कुछ करेंगे, लाइट ही नहीं आज, तो गुस्सा आ रहा है।
तो उसको मैनेज कैसे करें?
तो उसका मैनेज जो रूट है ना उसका, उधर करना है। आप अगर समझो आपको पेड़ में लग दिख रहा है कि अरे सारे फल तो सड़ रहे हैं पेड़ के ऊपर, क्या हो रहा है, तो आप ढूंढ रहे हैं और वो फल पे स्प्रे मार रहे हैं, पत्ते पे स्प्रे मार रहे हैं, कुछ होने तो हो तो नहीं रहा है। फिर पेड़ का डॉक्टर आता है, बोलता है इसका रोग है ना जड़ में है, जड़ को दवा करो, जड़ को दवा देंगे तो धीरे धीरे सब सारे फल और सब ठीक हो जाएंगे। और पहले ही बहुत देर तक आपने वो फल को और पत्ते को दवा दिया था, कुछ नहीं हुआ। उस तरह से आप एंगर एंगर करते रहेंगे तो वो एंगर ठीक ही नहीं होगा। एंगर का रूट किस में है, इच्छाओं में है, अतृप्त इच्छाओं में है। तो अतृप्त इच्छा हमको सोच समझ के करना चाहिए कि भाई ये होना है क्या कि नहीं होना है, उस उधर उधर काम करेंगे फिर उसका परिणाम जो है वो नहीं होगा। हाँ, तो व्हेन वी बिकम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड वी विल लर्न और पीपल विल टीच अस और सम गुरु विल टीच अस हाउ टू वर्क ऑन योर डिज़ायर्स एंड हाउ टू डिज़ायर एंड वॉट नॉट टू डिज़ायर। वो हम जब सीख जाते हैं तो फिर बाद में गुस्सा नहीं आता।
वर्क ऑन योर डिज़ायर्स,
यस, एनालाइज डिज़ायर्स whether they are proportionate, realistic, are we eligible?
Artificial.
हाँ, माइंड जो है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो दुनिया भर की चीज चाहता है। कोई अगर कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज़ आ गई तो वो तो व्हाट्सएप पे है अभी तक, लेकिन वो मुझे चाहिए, ढूंढेगा कहाँ मिल रही है वो, कहाँ से, कौन से साइट पे थी वो, कैसे ढूंढ ढूंढ के उसको चाहिए वो, बाद में बोलेगा आउट ऑफ स्टॉक हो गई वो बाय द टाइम यू रीच द सोर्स, फिर दुख होता है बहुत। लोग क्या क्या नहीं करते हैं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हवाई जहाज में शादी बनाते, सबमरीन में शादी करते हैं, वॉट ऑल थिंग्स दे डू, सबमरीन का वो पूरा लगा के माला पहनाते हैं, ऐसा है वो, है ना। देखो ऐसे हमारी ऐसे प्रकार की इच्छा है, तो क्या क्या नहीं करते हैं इंद्रिय भोग करने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए, तो भक्त बन जाता है ना। तो ये सारी जो बेफिजूल की इच्छा है ना, डिसप्रोपोर्शनेट नाजायज जो इच्छाएं हैं, समाप्त हो जाती है। फिर जैसे करते 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 बचता क्या है, फाइनली भगवान की इच्छाएं बचती हैं जिसको वो अपना लेता है कि दाय विल बी डन माई लॉर्ड, फिर दुख है नहीं और क्रोध भी नहीं है। अगर हुआ तो आपकी इच्छा है, नहीं हुआ तो भी आपकी इच्छा है, मंजूर है मुझे, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट। फिर गुस्सा कैसे आएगा,
क्रोध नहीं।
जैसे आप घर पे आए, आपको बैंगन सब्जी खाने का था, लेकिन आप समझ रहे हो कि नहीं मिली, लेकिन घिया की तो बनी है ना, चलो बैठो खिला दो, अच्छी तरह से गर्म गर्म है, खिला दो टाइम से। एक तरीका है, दूसरा तरीका है, आते ही देखा अरे नहीं है, थाली उठा के फेंक दिया, नहीं खाना खाऊंगा आज, कहीं भी जाकर होटल में जाकर बैंगन का भरता ही खाऊंगा। तो वो ऐसा क्रोध का उगम इधर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच।